الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ یو آر واچنگ مدنی چینل اور سلسلہ ہے صحت کے راز۔ فرام مائٹی رچ ٹو پینیوری بزنس مین پروفیشنل اسٹوڈنٹ اٹس اے میٹر آف کنسرن فار آل سیگمنٹس آف سوسائٹی۔ معاشرے کے ہر ہر طبقے کے لیے ہر ہر دور میں اہم ترین معاملہ وہ یقیناً صحت کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں سم کور ایشوز وچ وی آر فیسنگ انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، وہ اہم مسائل صحت کے جو ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر فیس کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ صحت کے راز میں کس راز سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ لیٹ سی ورڈس ان سائڈ دا باکس۔ دیکھیے اس باکس میں آج کیا ہے: آلودگی، پولوشن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پولوشن اور آلودگی، یعنی گندی ہوا، گندا پانی۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی آلودگی بھی ہوتی ہے، شور کی بھی آلودگی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہوگی، لائٹ کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ Yes, there is a pollution of light. آلودگی سے مراد کیا ہے؟ آلودگی سے مراد زہریلے اور گندے مادے ہیں جو کہ ان چیزوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اب میں سلسلے کے آغاز میں آپ سے ایک الرٹ شیئر کرتا ہوں، ایک ایسی انفارمیشن جو بڑی حیران کن ہے، اور جب میں نے یہ ریسرچ کی تو مجھے بھی اس کو پڑھ کر اور سن کر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ یہ آلودگی اور پولوشن ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ And if you'll not do some steps, some precautionary steps on war footings, then what will happen? اگر کچھ urgently نہ کیا گیا، جلدی نہ کیا گیا، تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ جن علاقوں میں آلودگی زیادہ ہے، دنیا کے جن خطوں میں پولوشن زیادہ ہے، وہاں جرائم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 2011 میں سیفی روتھ، جو ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں، اس نے یہ تحقیق کی کہ آلودگی کے یہ اثرات کہ ہوا گندی ہو جاتی ہے، وہ گندی ہوا ہم اپنے جسم میں لے کر جاتے ہیں تو پھیپڑوں میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں، گندا پانی پینے سے ڈائریا ہو سکتا ہے، کولرا ہو سکتا ہے، ڈائسنٹری ہو سکتی ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ ایک نئی تحقیق ہے کہ آلودگی کا یہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے انسان کے اوپر۔ کیا؟ کہ باقاعدہ تجربات کیے گئے، وی ہیو ٹرائلز، وی ہیو ایکسپیریمنٹس، وی ہیو سائنس بہائنڈ دس آل ریسرچ، دیٹ the areas where pollution is more you will have more crimes، ان جگہوں کے اوپر زیادہ زیادہ crimes ہوں گے۔ کیوں؟ آلودگی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، آلودگی سے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی پرفارمنس اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس علاقے میں زیادہ آلودگی ہو۔ اور آخر میں وہی بات کہ لیول آف کرائم یعنی جرائم کی شرح بھی وہاں بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا سائنسدانوں نے، آلودگی کا گندا بادل تھا، وہ گندا بادل وہ موو کرتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو موو کرتے ہوئے ٹریک کرتے تھے کہاں کہاں جا رہا ہے، اور جس شہر کے اوپر یہ ٹک جاتا تھا، رک جاتا تھا، اس شہر کے بچوں کا پیپر لیتے تھے، ایگزام لیتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے، اس بادل کے بغیر اور اس بادل کے ساتھ، بچوں کی پرفارمنس میں اور ریزلٹ میں واضح فرق ہوتا تھا، نتائج میں فرق ہوتا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی ایسی ہی ریسرچ ہوئی جس میں 600 مختلف علاقوں میں ہونے والے جرائم کا اندازہ لیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور ان کا بھی تعلق آلودہ ہوا سے پایا گیا۔ اینڈ اگین آئی ول ریپیٹ دیٹ وی ہیو سائنس ٹو بیک آل دیز کلیمز، کہ یہ جو گندے مادے، گیسز وغیرہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر برین انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے، دماغ کی سوجن ہو سکتی ہے، ناک، کان، گلے کے اندر وہ اریٹیشن ہو جاتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے 9 افراد آلودہ یعنی گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے कि ये गंदगी का जो स्टैंडर्ड है हमारी हवा में ये 50 होना चाहिए, 50। अगर ये 50 से कम है इसका मतलब हवा साफ है, हवा ठीक है। अगर 50 से ज्यादा है इसका मतलब हवा आलूदा है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया के बाज ममालिक में ये सतह 50 नहीं, 100 नहीं, 300 तक पहुंच जाती है, और बाज मुल्कों में तो 900 तक पहुंच जाती है, 900। जब उन ममालिक में एमरजेंसी लगा दी जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, चिमनियां बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा, गाड़ियां सड़कों पर नहीं आएंगी, या इस तरह सड़कों पर आएंगी कि आज इवन नंबर वाली गाड़ियां आएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरह के नंबरों वाली, और अगले दिन ऑड नंबरों वाली आएंगी। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। 999, ये टॉक्सिक लेवल बहुत हैजार्डस है। और फिर ये फजाई आलूदगी मदनी चैनल के नाजरीन उन बच्चों को भी मुतासर करती है जो दुनिया में अभी नहीं आए, अनबॉर्न बेबीज। स्टडीज ये बताती हैं कि ज्यादा आलूदगी वाली जगहों पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सर छोटे होते हैं और उनके जिस्म में आयरन की बहुत ज्यादा कमी होती है, जो कि बाद में एस्मा यानी फेफड़ों की बीमारी का सबब बन सकती है, और ऐसे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक आलूदगी पैदा करने वाली चीज है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको पता है ये कहां होती है? गाड़ियों के धुएं में और सिगरेट के धुएं में। तरस पता किस पे आ रहा होता है? वो जो साथ बैठा है। एक तो वो सिगरेट पी रहा है उसको तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो जो साथ बैठा है या सिगरेट पीने वाला बाप है और उसके साथ उसका नन्ना छोटा बच्चा या बच्ची है, और वो पैसिव स्मोकिंग हो रही है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो रही है, वो खुद सिगरेट नहीं पी रहा, वो तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन बाप के उस सिगरेट के धुएं की वजह से उसका जो फेफड़ा खराब हो रहा है। और अगर आप दोनों का एक्सरे ले ना, बाप का भी और बच्चे का भी, शायद दोनों के एक्सरे एक जैसे आए। वाय? क्योंकि वो धुआं इतना ही खतरनाक है, हत्ता कि वो जो सिगरेट की नोक के ऊपर हल्का सा वो जल रहा होता है ना, जो उससे भी जो धुआं उठ रहा होता है ना, वो भी इतना ही खतरनाक होता है। सिगरेट के धुएं के अंदर ये पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, और केरोसिन ऑयल इसको जलाने से जो धुआं पैदा होता है उसके अंदर भी ये पॉल्यूटेंट पैदा होते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, ये सारी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, मसला बताया, अब मैं आपको इसके हल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंस्टेंट रेमेडी। इंस्टेंट रेमेडी होती है ना कि सर में दर्द हो रहा है, चलो इलाज बाद में करेंगे, पहले 2 गोलियां खा लेते हैं, एकदम से इलाज जरा तेज हो जाएगा। तो सबसे पहले समझे, मैं आपको इंस्टेंट रेमेडी देने लगा हूं, एक ड्रिप का मशवरा देने लगा हूं कि ये तो करें ना, बाकी बातें बाद में देखते हैं। और वो क्या? लिसन केयरफुली, गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत अहम है, और ये वो तरीका है जो हम सब कर सकते हैं। वी ऑल कैन डू, फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज पीपल, फ्रॉम रिच टू पुअर, फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड, फ्रॉम लिटरेट टू इलिटरेट, सारे लोग ये काम कर सकते हैं। और वो क्या? इंफरादी और इज्तिमाई पर हमें किस चीज पर फोकस करना है? इट्स सिंपली नॉट टू वेस्ट, जाया ना करें, प्लीज जाया ना करें। डोंट वेस्ट प्लास्टिक, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट वॉटर, डोंट वेस्ट पावर। खाना जाया ना करें, पानी जाया ना करें, बिजली तवानाई जाया ना करें, और प्लास्टिक जाया ना करें। इतना खरीदें जितना इस्तेमाल करना है, इतना प्लेट में डालें जितना खाना है, और ग्लास में भी उतना डालें जितना पीना है। वाकई ये वो काम है जो हम सब कर सकते हैं, और करना चाहे तो करेंगे, और अगर नहीं कर रहे ना तो सिर्फ लापरवाही इसकी वजह है, केयरलेसनेस, और कोई वजह नहीं होगी। आप देख लें, आप चेक कर लें जो बातें मैंने कही। इफ वी आर डूइंग इट वी मस्ट हैव ए कन्विक्शन, एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट द रीजन इज ओनली एंड ओनली केयरलेसनेस, लापरवाही। एक प्रोजेक्ट बनाकर, एक एम बनाकर हम ये काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में पैदा होने वाले तमाम खाने का 1/3 जाया हो जाता है। मेरे सामने अगर 3 प्लेटें पड़ी हो उनमें से 1 प्लेट खाना सालाना जाया हो जाता है, और हर 8 में से 1 फर्द रोजाना बिस्तर पर भूखा जाता है। और दुनिया में हर सेकंड बाद, गौर से सुनिएगा, आप हिल जाएंगे ये सुनकर, हर सेकंड के बाद 1 ट्रक पुराने कपड़ों का भरा हुआ वो फेंक दिया जाता है। सेकंड गुजर गया, फिर सेकंड गुजर गया, फिर सेकंड गुजर गया, हर सेकंड बाद दुनिया में पुराने कपड़ों का एक लदा हुआ ट्रक लैंडफिल्स में, जमीन में दबा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, और सिर्फ फेंका नहीं जाता बल्कि जलाया भी जाता है। ये फैशन इंडस्ट्री की ट्विस्टिंग एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी और इश्तेहारबाजी ने आजकल एक अजीब ट्रेंड पैदा कर दिया। अभी गर्मी आई है ना, लॉन की डिमांड बढ़ी है और लॉन के कपड़े, इसकी मांग बढ़ गई है और कंपनीज के जदीद तरीके जो एडवर्टाइजमेंट के हैं, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, इतने इतने महंगे कपड़े हो गए, महंगे दामों में बिकते हैं, नए नए डिजाइन खरीदने की एक ऐसी अजीब किस्म की रेस लग गई है। एक जगह हमने सुना कि खरीदार ने एक दुकान से एक खास प्रिंट का सारा कपड़ा उठवा लिया, वो होलसेलर नहीं था, उसकी अपनी दुकान नहीं थी, सिर्फ इसलिए उठाया कि शहर में या उस इलाके में मुझ जैसे प्रिंट वाला कोई और मुझे नजर ना आए, ये प्रिंट मेरे लिए ही हो और ये प्रिंट मैं ही पहनूं ताकि मैं सबसे नुमाया नजर आऊं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये मुआशरे की रविश, ये ठीक तो नहीं है। और फिर ये कपड़े पुराने हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, कभी कभार तो पुराने भी नहीं होते, वैसे ही कपड़े फेंक देते हैं कि ये फैशन से आउट हो गए। और ये याद रखिए, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि इस वक्त दुनिया के अंदर हर 5 में से 3 कपड़े औसतन एक साल में फेंक दिए जाते हैं। यानी अगर आपके पास 5 सूट हैं तो आप उन 5 सूटों में से 3 सूट एक साल में फेंक देंगे। और ये कपड़े पुराने होकर जब फेंके जाते हैं, ये जो मलबा बनता है इतना बड़ा, ये इतनी आलूदगी पैदा करता है, इतनी आलूदगी पैदा करता है कि दुनिया के सारे हवाई जहाज और सारे बहरी जहाज मिलकर भी इतना धुआं नहीं पैदा करते जितने सिर्फ ये कपड़े आलूदगी पैदा करते हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव, बात वही जो पहले हमने की कि उतना खरीदें जितना इस्तेमाल करना है, उतना प्लेट में डालें जितना खाना है, उतना पानी डालें जितना पीना है। आपको पता है एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए कितने लीटर पानी लगता है? एक कॉटन की शर्ट जो पहनी हुई आपने, 2700 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान 2.5 साल तक पी सकता है। यानी एक शर्ट पे जितना पानी लग गया, वो एक इंसान को पानी दिया जाता 2.5 साल वो पानी पी के जिंदा रह सकता था। और 120 मिलियन दरख्त हर साल काट दिए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए, 120 मिलियन ट्रीज। और अब एक दूसरा रुख, 8 मिलियन टन यानी 80 लाख टन। मदनी चैनल के नाजरीन, एक टन में 907 किलो होते हैं, यानी 7.5 अरब किलो, दोबारा सुनिए, 7.5 अरब किलो प्लास्टिक, ये गंद, ये बोतलें, ये कॉटन बर्ड, ये पैकिंग मटेरियल, ये प्लास्टिक के बैग, ये 7.5 अरब किलो एक साल में समुद्र के अंदर फेंक दिए जाते हैं। माई टोन इज लाइक दैट हाउस इज ऑन फायर, अंदाज से ऐसे लग रहा है ना जैसे घर को आग लगी हुई है। अरे बाबा, घर को आग वाकई लगी हुई है। वी हैव टू टेक स्टेप्स, वाकई इकदाम ना किए गए तो मसला बन जाएगा। अगर कोई मेरे घर में आके कूड़ा फेंक दे, क्या रिएक्शन होगा? तो हम जो इतना कूड़ा समुद्र में फेंक रहे हैं, समुद्र भी किसी का घर है। 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार समुद्र में रहते हैं। आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं, वेल मछली किसी शोर पर यानी किसी बीच पर किसी साहिल समुद्र पर मुर्दा हालत में पाई गई, जब खोला अंदर 50 पाउंड प्लास्टिक मौजूद था। ये जानवर प्लास्टिक को ना अपनी गिजा समझ कर खाते, क्योंकि वो समुद्र में पियर ऐसे होता है जैसे उनका खाना होता है। और फिर ऐसे ऐसे प्लास्टिक मौजूद हैं जो कि जब जानवर एक मछली खा लेते हैं तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, उनका जो निजामे निजाम है, जो खाने की नाली पेट, इसको जाके ब्लॉक कर देती है। अब वो मछली कुछ खा नहीं सकती, सिसक सिसक कर मर जाती है। सो नाउ वी हैव टू डू इट। सेहत का राज क्या है? कि वी नीड गुड एयर, नॉट डर्टी एयर। सेहत का राज ये है कि हम हवा में मौजूद आलूदगी को दूर करें, क्योंकि इसकी वजह से फेफड़ों की और छाती की बीमारियां लग सकती हैं, एस्मा हो सकता है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल का जो कॉन्सेप्ट मौजूद है, अब तो बहुत से मुल्कों के अंदर ये बाकायदा नाफिज हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी लोकेलिटीज ऐसी हैं, बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर आपको वो बैग मिलेगा जो ऐसे प्लास्टिक से बना हुआ है जो कि आम प्लास्टिक नहीं है बल्कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है, अगर कोई डबल रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर पड़ा हो तो वो कुछ ही अरसे के बाद मट्टी पर मौजूद नहीं रहेगा, मट्टी के अंदर घुल जाएगा। ऐसे होता है ना, बैक्टीरियाज आ जाते हैं और वो अपनी असल हालत में बाकी नहीं रहता, फफूंदी फंगस लगती है उसको, फिर वो खत्म हो जाता है। इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कि ये चीज खत्म हो जाती है। ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, हजारों साल तक भी पड़ा रहे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। यही वजह है इसकी कि ये आलूदगी फैलाता है। पुराने दौर की बात है, हमें याद है, जब दूध लेने जाना है डोल साथ होगा, सब्जी लेने जानी है कपड़े का थैला साथ होगा। एक कपड़े का थैला सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 400-500 प्लास्टिक के बैग्स का मुतबादिल बन सकता है। दिस इज अ मिशन, दिस इज अ थीम अक्रॉस द ग्लोब। इस वक्त दुनिया में ये थीम बन चुकी है कि हमने किस अंदाज से इसको दूर करना है। तो सेहत का राज क्या है कि वी नीड गुड वॉटर, वी डोंट नीड कंटेमिनेटेड वॉटर। हमें वो पानी जो आलूदा है वो नहीं चाहिए, बल्कि वो पानी चाहिए जो कि साफ है, क्योंकि आलूदा पानी की वजह से हैजा हो जाता है, गैस्ट्रेंटाइटिस हो जाता है, टाइफाइड हो सकता है। और एक अंदाजे के मुताबिक अस्पतालों में जो बेड भरे होते हैं मरीजों से, 60% मरीज वो होते हैं जो गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए। खाना, एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिनट एक इंसान दिन में खाना पकाने और खाने में सर्व करता है, 60 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो कीज आर रिड्यूस एंड रीसाइकल एंड रीयूज। अगर कोई फल और सब्जियां बच जाएं, उसका अचार डाल लें, उसका जूस बना लें, अगर वो ठीक हालत में है, खराब नहीं हुई, तो उसको किसी मुस्तहकीन में बांट दें। जब भी शॉपिंग करने जाएं, लिस्ट बना लें, वही खरीदें जिसकी जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके ज्यादा ना खरीद लें, बल्कि जितना जरूरत है उतना खरीदें। फायदा इसका क्या होगा, आप अगली दफा आएंगे ताजा चीज आपको मिलेगी। और एक और बहुत अहम बात, अपने फ्रिज का टेम्परेचर थर्मोस्टैट सही हालत में रखें। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 1/3 अफराद ने अपना फ्रिज रिकमेंडेड टेम्परेचर पर रखा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं इस बात का कि फ्रिज के अंदर थर्मोस्टैट होता है, उसको सही जगह पे रखना होता है। 5 डिग्री या उससे कम, 5 डिग्री या उससे कम पर फ्रिज का थर्मोस्टैट होना चाहिए, और दुनिया में यह ट्रेंड भी आम नहीं है। वी टेक डिसीजंस इंडिविजुअली, इट्स व्हाट वी कैन डू एंड इट्स समथिंग वी शुड डू, बट दिस इज नॉट एनफ। आई टेक डिसीजन समटाइम्स दैट आई विल नॉट यूज प्लास्टिक्स, आई विल नॉट यूज सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच क्रिएट पोल्यूशन, बट दिस इंडिविजुअल एफर्ट इज नॉट एनफ। हम कभी कभार ऐसे फैसले कर लेते हैं, हमारे दिल में ये बात आती है कि मैं प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं गंद को सही जगह पर फेंकूंगा, अपनी गाड़ी का इंजन ठीक करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, होना चाहिए। जो चेंज होता है हमेशा इंडिविजुअल लेवल से आता है। लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन, यहां पर मैं मुखातिब हूंगा मुआशरे के उन बा असर अफराद से जिनको इन्फ्लुएंशियल पीपल कहा जाता है, उनको आगे बढ़ना होगा, जिनकी मिले हैं और ऐसे अफराद जिनकी बात का असर लिया जाता है, इन लोगों को आगे बढ़कर इसका तदारुक करना होगा। मिलों की चिमनियों से निकलता हुआ गंदा धुआं, मिलों के अंदर से निकलता हुआ गंदा पानी जो समुंदर को आलूदा कर रहा है, दीज मस्ट बी स्टॉप्ड ऑन अलार्मिंग बेसिस। रेड लाइट्स आर देयर, लाल बत्ती तो जल रही है, देख नहीं रहे कैसे कैसी बेवक्त की बारिशें आ रही है, कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं, गर्मी कितनी शदीद होती चली जा रही है, जलजले आ रहे हैं। तो फिर ये जो लैंडस्लाइडिंग्स हैं, गंदा पानी है, जो लोग अथॉरिटी हैं वो लोग इसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो दुनिया में यही तरीका देखा है कि एक अहम आदमी कोई बात करता है तो उससे बात का वजन बढ़ जाता है, और अहम फोरम पे आके करता है तो बात का वजन बढ़ जाता है, लोग उस बात को मानते हैं, समझते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, बिलखसूस रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर जब कारोबार की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और हर तहकीक के मुताबिक बिजनेस को बूस्ट मिलता है, क्योंकि रमजान की बरकतें तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, रोजा फर्ज है, मुसलमान रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रोजे से उनकी रूटीन में कंप्लीट चेंज आ जाता है। सहरी, अफतारी, ईद, कपड़े, जूते, मिठाइयां, फल, खजूर, पकोड़े, बेसन, दूध, ईदी दी जाती है, होलसेल, रिटेल, हर एतबार से कारोबार को और जिंदगी के हर पहलू को बूस्ट मिलता है। और गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात, दोनों शोबों के अंदर एक तरक्की आती है, दोनों को बूस्ट मिलता है। और फिर सबसे बढ़कर अतियात दिए जाते हैं, डोनेशन, चैरिटी दी जाती है, एंड पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट पीपल मोस्ट रिस्पॉन्सिव पीपल टू चैरिटी। पाकिस्तान में रहने वालों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं क्योंकि ज़कात फर्ज है, और फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्दी है, बिलखसूस खजूर दूध और फलों की फरोख्त और इस्तेमाल बहुत बढ़ जाती है। तो हमें यहां पर ख्याल रखना चाहिए, इसके ज्या से बचना चाहिए। ये ट्रेंड है और बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि इफ्तारी जो है वो तकसीम की जाती है दीगर घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर इफ्तार पार्टीज वगैरह होती हैं, इफ्तार के मौके पे गैदरिंग होती है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे खाना भी पकता है। लेकिन चीज वही है कि खाने को जाया ना किया जाए बल्कि खसूसी एहतमाम के साथ उस खाने का एक एंड पॉइंट जो है, कंक्लूजन है, वो ठीक होना चाहिए। मदरी चैनल के नाज़रीन, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने फूड वेस्ट के हवाले से हमारी बड़ी जबरदस्त तरबियत फरमाई और बारहा आप तरबियत फरमाते रहते हैं। मदनी मुजाकरे आप सुने, आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत बड़ी जबरदस्त तरबियत फरमाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, और फिर एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, अमल वो है जो अल्फाज से ज्यादा तासीर रखता है, नॉट ओनली टॉक्स बट रिजल्ट। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं, जब मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया था उस वक्त एतकाफ के दिन थे, और दावत इस्लामी की जिस एस्पेक्ट ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासर किया वो यही थी कि ये इस्लामी भाई प्लेट साफ करते हैं और आखिर में चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ते। ये चीज बड़ी मुतासर कुन थी, और आज भी जब कोई देखता है बहुत हैरान होता है, बड़ा खुश होता है कि ये जबरदस्त तरीके से इसको ऑप्ट करते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, ये इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर। आप सिर्फ ये बताएं कि जी हमने फूड वेस्ट नहीं किया, आज दुनिया में बहुत बड़ा मसला ही है, आप इसको सर्च आउट करें, आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कई एजेंसीज हैं ऐसी जो कि इस वक्त लगी हुई है फूड वेस्ट को बचाने के लिए, पूरे पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और जब आप उनको बताएंगे दीन इस्लाम की ये ओरिजिनल पिक्चर उनके सामने रखेंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हमें मना फरमाया, मेरे सामने हदीस पाक है, किताब आदाब तआम जो फिजान सुन्नत का एक बाब है उससे मैंने हदीस पाक ली। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ पाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठाया, पूछा और तनावल फरमा लिया और इरशाद फरमाया, ए आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो क्योंकि ये चीज रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। देखा आपने कैसा जबरदस्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है, सेहत का राज हमें मिला है, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। गुड पीपल विल टीच गुड थिंग्स, बैड पीपल विल टीच बैड थिंग्स। और वाकई मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो जया होता है बड़ा, सिर्फ एक चीज जया नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि जब आपने एक रोटी फेंक दी और एक प्लेट चावल फेंक दिए तो वो सिर्फ चावल के दाने या रोटी की सूरत में चंद अनाज जाया हो गया? नो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम नंबर 1 to number 10 सारा कुछ जाया हो गया। वो तहज्जुद में उठ के किसान की हुई मेहनत, वो बिजाई सोइंग ऑफ सीड्स, उसका उठ के फसल का ख्याल रखना, फसल को कोई कीड़ा ना लग जाए स्प्रे करना, पेस्टिसाइड्स खाद, फिर उसके बाद उसकी रखवाली पानी डालना, और उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी जो वाडियां होती हैं, और फिर उसके बाद उसको बोरी में बंद करना, फिर उसको लोड करना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसका रिटेल मार्केट में आना, फिर बिकना, उस आपकी प्लेट तक आने के लिए 130 दिन में गंदम का पौधा तैयार होता है 130 दिन में, और आपकी प्लेट तक आने तक जितना भी काम हुआ जब आपने फेंका वो सारे का सारा जाया हो गया। This is not good. This is not good. और फिर मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इंडिविजुअल लेवल पर इसकी जब आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यकीनन इसके अच्छे नतायज हासिल होंगे। फिर मैं आपसे यही कहूंगा, अच्छे माहौल से व्यवस्था हो जाइए। गुड पीपल विल टीच गुड थिंग्स, बैड टीचर विल टीच बैड थिंग्स। एंड इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ अमीर अहले सुन्नत दैट ही हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ इतकाफ टू अ न्यू लेवल विद हाइटेंड एक्यूरेसी। एतकाफ की बाहरें होती है रमजान मुबारक के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हर तरह से एक जदवल बना होता है हमारा, 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन है आप समझ लें, वहां पर नमाज का प्रैक्टिकल तरीका सिखाया जाता है, बुनियादी इस्लामी मालूमात के सेशंस होते हैं, एक ट्रेनिंग सेशन इस तरह से मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको बकायदा टाइम टेबल के हिसाब से 10 दिन गुजारने हैं, सोना है सुन्नत तरीके के मुताबिक, सलात तस्बीह के नवाफिल होते हैं, और फिर जो हमारा टॉपिक है आज का, खाना। अब दो टाइम खाना तो होगा, सहरी का और अफ्तारी का, एक कंपटीशन होता है। देखिए कितना प्यारा एक मुकाबले की फजा होती है। क्या कि सारे लोग जब खाना खाते ना इतकाफ में, तो वहां पर जो परात होती है ना उसको साफ करना होता है बिल्कुल अच्छी तरह, और फिर वो उठा के दिखाते हैं कि जी मेरे हल्के की परात साफ है, दूसरा अपने हल्के की परात दिखाता है, सारे अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुबहान अल्लाह बोलते हैं, और जिसने किया होता उसको इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो ऐसा जबरदस्त सिर्फ ये इतकाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि दावत इस्लामी के माहौल में जहां भी ऐसा एक फिजा बनती है वहां पर ऐसा किया जाता है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि आलूदा बर्तन बगैर साफ किए पड़ा रहे तो उसे शैतान चाटता है। तो किताब फैजान सुन्नत का जो पहला बाब है आदाब ताम, इसको पढ़कर सुनाइए, इसे पढ़िए। दावत इस्लामी की तंजीमी इस्तलाह में इसे मदनी दर्स कहा जाता है। ये दावत इस्लामी के 12 बुनियादी कामों में से काम है। अगर हम ये करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसका बहुत फायदा मिलेगा, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे मुआशरे को इसका फायदा मिलता चला जाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, फूड वेस्ट के बारे में आज हमने सुना, आलूदगी के बारे में सुना कि दुनिया के अंदर ये आलूदगी कितनी बढ़ती चली जा रही है। नाउ इट्स अ ड्यूटी टू इरेडिकेट, टू स्टॉप प्रोलिफरेट दिस पर्टिकुलर मैनस। इस चीज को बचाने के लिए अपने तौर पर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हमें कोशिश करनी चाहिए। आइए सिलसिले के आखिर में आज हेल्थ टिप शेयर आपसे मैं करता हूं। हेल्थ टिप क्या होगी आज की, मैं अमीर अहले सुन्नत की एक नसीहत इसको हेल्थ टिप बनाऊंगा, और ये है ब्लड टेस्ट। अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ये कौन कौन से टेस्ट है सुन लीजिए। सबसे पहले है LFT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, दूसरा RFT रिनल फंक्शनिंग टेस्ट, तीसरा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके बाद यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है यानी शुगर है, और फिर इसमें लिपिड प्रोफाइल। ये 6 किस्म के टेस्ट हैं जो अमीर अहले सुन्नत हमें ताकीद फरमाते हैं कि करते रहने चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, LFT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट आपका जिगर जो भी काम कर रहा है उसके बारे में क्लियर पिक्चर पेंट अप कर देगा। लिवर 500 से ज्यादा काम इंसान के जिस्म में कर रहा होता है, जिसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड भी शामिल है, जिसमें जिस्म से गंदे मवाद का इखराज भी शामिल है, जिसमें जिस्म को तवानाई देना भी शामिल है, खाने को हजम करने के लिए मटेरियल शामिल भी है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए LFTs करवाएं, और साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी करवा लें। याद रखिए ये अमराज काबिले इलाज हैं। ये मत समझिए कि मैं नौजवान हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। हमारे सामने ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसके अंदर लिवर पहले थोड़ा खराब होता है लेकिन बेएहतियाती की वजह से फिर वो इस जगह पहुंच जाता है कि वहां से रिवर्स मुमकिन नहीं होता। रिनल फंक्शन टेस्ट है यानी गुर्दे का टेस्ट है, इससे आपको ये पता चल जाएगा आपका गुर्दा जो है उसकी फंक्शनिंग के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं आया। कि अगर पहले कोई डिसऑर्डर आ रहा है टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे और उसका इलाज करवा सकेंगे। इसी तरीके से यूरिक एसिड है, आमतौर पर जो अफराद 30-40 साल से ज्यादा के हो जाते हैं, यूरिक एसिड दर हकीकत मसल्स का एक प्रोडक्ट है। जब इंसान के मसल्स बढ़ते हैं तो ये गंध पैदा होता है। अगर यूरिक एसिड की मिकदार खून में बढ़ जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, उससे दर्दें पैदा हो सकती हैं और भी दीगर मसाइल हो सकते हैं। अगर आप वक्त पर पता चला लेंगे, दवाई इसकी अवेलेबल है, परहेज अवेलेबल है, उससे यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। इसी तरीके से ब्लड शुगर है, फास्टिंग की ब्लड शुगर होनी चाहिए यानी सारी रात का फाका हो, कुछ ना खाया हो, सुबह उठ के ब्लड शुगर करवाएं और फिर खाने के 2 घंटे के बाद करवाएं। इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि कहीं आप खुदा ना खास्ता डायबिटीज के शुगर के मरीज तो नहीं बन रहे। इसका एक और टेस्ट होता है HbA1c जो 3 महीनों की शुगर की रीडिंग आपको दे देता है, ये भी करवा लेना चाहिए। और फिर आखिर में अहम तरीन टेस्ट लिपिड प्रोफाइल, आपके जिस्म में कहां कहां चर्बी बढ़ रही है लिपिड प्रोफाइल उसको स्कैन कर देगा। आपके खून के नालियों के अंदर कहीं चर्बी जम तो नहीं रही, टार तो नहीं जम रहा, ये टेस्ट आपको बता देगा। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स कम हो रहे हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल्स HDL बढ़ रहा है, फौरन से पहले हमें उसका ख्याल रखना है, वरना अचानक हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। अंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का एपिसोड हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की इस नसीहत पर अमल करते हुए हम जाती तौर पे इस चीज के गवाह हैं। बहुत से इस्लामी भाइयों ने टेस्ट करवाए और वक्त पे उनको अपनी बीमारी का पता चला, उन्होंने इलाज करवाया, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाई। तो आप भी बिल्कुल देर ना कीजिए। ये टेस्ट, इनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि भूख के साथ होते हैं, यानी पेट भरा तो नहीं होंगे, सारी रात की भूख के साथ ये टेस्ट होंगे। लिपिड प्रोफाइल जो है, इसके लिए सारी रात की भूख अगर हो जाए 8 घंटे से ज्यादा तो वो बेहतर है, क्योंकि रात के वक्त कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रहा होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यही कमाल है मेरे अमीर अहले सुन्नत का, अल्हम्दुलिल्लाह आप हर हर शोबा हाय जिंदगी के बारे में हमें गाइड करते हैं, आप हमें हमारी हेल्थ के बारे में भी बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। और जो अमीर अहले सुन्नत ने बातें इरशाद फरमाई, सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपके साथ जो इस्लाम भाई खुश नसीब होते हैं वो हमें बताते हैं कि आप सबसे पहले इन पर खुद अमल करते हैं, और इस तरीके से आपके चाहने वालों में अमल करने का जज्बा और बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए 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 इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आज हमने जो आलूदगी के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर आलूदगी की एरेडिकेशन के लिए कोशिश करेंगे, यही सेहत का राज है। और हेल्थ टिप में हमने सीखा, ब्लड टेस्ट, 6 किस्म के ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, इनकी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर को चेक करवा लीजिए, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से शिफा हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।